आज है
18 जुलाई 1965 की वाणी।
रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं।
कब समझते हैं? कौन से युग में? संगम युग में समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। और कोई ऐसे भी हैं जो विमुख बैठे हैं? कोई नहीं। रावण?
रावण तो बैठे।
रावण तो विमुख बैठा है। तो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख के द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। इसके मुख द्वारा? ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा के कितने मुख होते हैं? सात? पांच मुख होते हैं। दो यज्ञ के आदमी हुए, आदि माता आदि पिता और एक दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में, और अभी वही आदि में था वो अंत में फिर है। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला एक ही है। सब वेदों ग्रंथों शास्त्रों उपनिषदों आदि सबका सार बैठ बाप समझाती। क्या था? वेद शास्त्र ग्रंथ आदि झूठे नहीं है, उनमें भी सार है। और वो सार की बात बाप बैठ समझाती। झूठे शास्त्र कब हो जाते हैं? जब अनेक धर्म गुरु बैठकर उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्याएं करते हैं। तो द्वापर के आदि से व्याख्याएं होते होते कलयुग के अंत में सारे शास्त्र झूठे हो जाते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भी खंडित हो जाती है। तो अभी सबका सार बैठ बाप समझाते। सब शास्त्रों में क्या सार की बात है वो बताते हैं। ये बच्चों की ही बुद्धि में बैठता है। क्या? सार रूपी मक्खन और कोई की बुद्धि रूपी पेट हजम नहीं कर पाता। जो मेरे बच्चे हैं वो ही उन्हीं की बुद्धि में बैठता है। चित्रों में भी ये है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काहे की स्थापना? संगम युग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना। तो अभी तक तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई है। पहले स्वर्ग के देवताओं की स्थापना होगी या देवताओं से पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे?
ब्राह्मण पहले बनेंगे।
पहले बनते हैं ब्राह्मण। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की रचना होती है और ब्राह्मणों को फिर शिक्षा दे करके देवता बनाया जाता है। तो स्थापना स्वर्ग की होती है। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेदों शास्त्रों जिनमें अब कोई सार नहीं रहा है उसका खुद बैठ सार समझाते। अब कोई सार नहीं रहा, माने कभी सार था वेदों शास्त्रों में। कब था? हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, सार वाली होती है और अंत में तमो प्रधान हो जाए। तो द्वापर युग के आदि में जो शास्त्र बने थे उनमें फिर भी सच्चाई थी, क्योंकि जिन्होंने इन शास्त्रों की रचना की वो सात्विक स्टेज में थे। बाद में धीरे 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 व्याख्याएं होते होते और उनमें एडिशन होते होते शास्त्र सब झूठे हो गए। तो अभी सार बाप समझाते हैं। ये सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। क्या? सभी जो शास्त्र है वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री हो गई। क्यों?
वो भगवान तो मिला नहीं उनको,
क्योंकि ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति रावण से आती है। रावण के अनेक मुख हैं और राम का एक मुख है, तो अनेक मुखों की बात तो जरूर झूठी हो जाएगी। ढेर के ढेर शास्त्र और उन शास्त्रों को लिखने वाले भी ढेर के ढेर मनुष्य गुरु है, समझाते भी बच्चों को है। और समझाते कौन है? परमपिता परमात्मा भोलानाथ शिव, वो निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते रहते हैं। क्या ब्रह्मा द्वारा सुनाते भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना भी करते हैं और ब्रह्मा द्वारा फिर उन शास्त्रों का सार समझाते भी हैं। क्योंकि पहले होता है सुनना, फिर होता है समझना, और जब बात समझ में आ जाती है तो धारणा की जाती है। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते रहते हैं, जिनको समझाते हैं वो फिर समझ कर औरों को समझाते हैं। जो खुद समझा हुआ नहीं होगा वो दूसरों को भी नहीं समझा सकता। अगर नहीं समझा सकते हैं तो जरूर वह खुद नहीं समझे हुए, अर्थात बेसमझ है। और बेसमझ को ही समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, सबको बेसमझ कहने का हक किसको है? बाप को है, क्योंकि बाप के मुकाबले सब बेसमझ हो। ना मुझ बाप को जानते हो, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसलिए बाप तुमको बेसमझ कहते हैं, इसलिए तुम बाप भोलानाथ से वर्षा नहीं लेते आए। अगर समझ होती तो वर्षा लेते, काहे का वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेते, सुख शांति का वर्षा लेते। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, काहे का वर्षा लिया था? सतयुगी स्वराज्य का वर्षा लिया था। अभी स्वराज्य का वर्षा हम ले रहे हैं। स्वराज्य क्या होता है? स्व के ऊपर राज्य, स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। तो अभी तुम स्वराज्य का वर्षा ले रहे हो, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवाई दिया। एक की समझाने से तुम वर्षा लेते हो और अनेकों की समझाने से वर्षा गवाई दी। रावण राज्य के कारण तुम पतित, भ्रष्टाचारी, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। काहे के कारण? अनेक सिरों के कंट्रोल में आने के कारण पतित बने। बुद्धि का भी पतन हुआ, शरीर की शक्तियों का भी पतन हुआ और सुख शांति का भी पतन हो गया। भ्रष्टाचारी बन पड़े। मैंने तुमको क्या बनाया था? श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाला बनाया था। अब तुम श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करना भूलते जाते, भूल गए। कोई से बात भी करेंगे तो आंखें लाल पीली करके बात करेंगे। दृष्टि से स्नेह देना, शुद्ध स्नेह लेना और देना जैसे भूल गए। तो बाप अभी समझाते हैं कि तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी बन गए, इतने बेसमझ बन पड़े, तुम कंगाल बन गए, आसुरी मत से कंगाल बने और ईश्वरीय मत से कंगाली खत्म कर देते हो। भारत सारी दुनिया का सरताज बन जाता है। अब आसुरी मत पर ही चलते हैं। माया ने इतना पत्थर बुद्धि बनाया है जो समझाने से भी कुछ नहीं समझते। जानते हो बाबा ने कल पहले हमको समझदार बनाया था। क्या बनाया था? बुद्धि ऐसी स्वच्छ बना दी थी जो सत्य की परिभाषा बुद्धि में आसानी से आ जाती। सत्य क्या है? वो बुद्धि में बैठता था। जब सत्य बुद्धि में बैठता है तो गॉड इज ट्रुथ, उसका स्वरूप बुद्धि में बैठ जाता है। सच्चाई बुद्धि में बैठती है तो मैं सत्ययुग के मालिक बन जाती। सत्ययुग के ही नहीं, सारे विश्व के मालिक बन जाती। अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। क्या? माया के गुलाम बन पड़े हैं तो प्रकृति भी हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग पड़ी। माया के गुलाम संपत्ति के गुलाम नहीं कहे जाते। धन संपत्ति रामकृष्ण के पास भी थी, उनको माया का गुलाम नहीं कहा जा सकता। भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? कि धन संपत्ति ही माया है, लेकिन धन संपत्ति को माया नहीं कहा जाता। काहे को कहा जाता है? मनुष्य के अंदर जो कमजोरियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पांच विकार ही माया के रूप है। माया रावण के गुलाम पांच विकारों की जंजीर में हम बंधे हुए हैं। क्या? कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहा जो इन पांच विकारों की जकड़ से, पांच माया के पंजे से जकड़ा हुआ न हो। और सब शोक वाटिका में, भक्ति मार्ग में तो कहते हैं रावण की अशोक वाटिका थी। हा माने नहीं, शोक माने दुख, जिसमें कोई दुख खाने पीने रहने का नहीं था। तो आज की दुनिया भी कैसी है? है? खाने पीने पहनने ओढ़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मानसिक संताप किसी को नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। सब शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व में है, वो सारी दुनिया में अनेक सिर वालों का राज्य है। ये अनेक सिर इकट्ठे होकर के सारे संसार में झूठ फैलाए रहे। अभी सच्चे खंड रूपी सत्ययुग नहीं है। सत्ययुग कौन बनाता है? सतगुरु बनाता है। एक सतगुरु सच्चा और बाकी सब मनुष्य गुरु झूठे। सत्य गुरु जो है वो जब इस सृष्टि पर आता है तब सच खंड सतयुग की स्थापना करता है। अभी वो सतगुरु आया हुआ है। सारे विश्व में रावण राज्य को हटाए राम राज्य की स्थापना कर रहा है। भारतवासी खास, बाकी दुनिया आम रावण की जंजीर में बंधे हुए। क्यों? खास भारतवासी क्यों कहा? कि भारतवासियों में जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उतना दूसरे देशों में इतना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। ये जितने भ्रष्टाचारी बन गए हैं उतने दूसरे देशों में भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है सबसे पुराना धर्म। आज सनातन धर्म जो चीज पुरानी होती है वो दुखदायी हो जाती है। चाहे मकान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। तो जो नए नए धर्म आए इस दुनिया में, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक, शंकराचार्य, ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए, जिनकी हिस्ट्री हमको मिलती है। लेकिन ये सनातन धर्म कब किसने स्थापन किया ये दुनिया में कोई नहीं जानता। तो सब इस रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं, इसलिए जो कुछ करते हैं रंग ही करते हैं। क्या यथा राजा तथा प्रजा, सब रावण के राज्य में है। तो रावण जैसा काम करेगा राजा को देख करके प्रजा भी वैसे ही उल्टे काम करने लग पड़ती। बाप आकर के सबको राइटियस बात बताते हैं। पहली राइटियस बात क्या बताते हैं? पहली राइटियस बात बताते हैं, तुम आत्मा स्टार मिसल ब्रकुटी में चमकता हुआ सितारा हो, जिसकी निशानी बिंदी या टीका मस्तक में लगाते। मस्तक में टीका क्यों लगाते हैं? नाक में या ठोड़ी पे लगा ले, कोई नहीं लगाता। क्यों क्यों नहीं लगाते? क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनि महर्षियों ने जब बुद्धि उनकी स्वच्छ थी तो उनको पता था, उन्होंने गीता में लिख दिया था, ब्रह्मोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो ये बाप भी आकर के पहली शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना हुआ पुतला नहीं हो, ये तो जड़ तत्व है, तुम तो चैतन्य आत्मा हो, सितारे में सल चमकती हुई रोशनी हो, जिस आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आंखें कैसी हो जाती? बटन जैसी हो जाती। जब तक आत्मा है तो आंखों में रोशनी है। ये किसकी रोशनी है? कोई बैटरी रखी है अंदर क्या? बैटरी है आत्मा, ये चैतन्य बैटरी है, वो बैटरी तो नष्ट भी हो जाती है, ये बैटरी कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, इसकी ज्योति धीमी हो जाती, जब ज्योति उजियाई जाती है तो जनरेटर परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और सभी उजियाई हुई ज्योति रूपी बैटरियों को चार्ज कर देता है। तो परमपिता परमात्मा को राइटियस कहें, क्योंकि पहली मुख्य बात जो दुनिया में दुख और अशांति बढ़ाती है वो कौन सी है? देह अभिमान में। क्या जब देह भान में आते हैं तो समझते हैं मैं राजा हूं, जो चाहूं सो करूंगा, मैं मंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, अहंकार आ जाता है, प्रभुता पाहिका ही मदनाई। ये देह का अहंकार दुनिया में दुख की पैदाइश करता है, अशांति बढ़ाता है। तो पहली बात बाप समझाते हैं, बच्चे तुम स्टार मिसल प्रकृति में चमकता हुआ रोशनी का पुंज हो। रावण को अनराइटियस कहेंगे क्योंकि वो उल्टी बात बताता है। दुनिया में जो दुनिया का कल्याण करने का ठेका उठाए रहे हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाते जाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? है? मरीज बढ़ते जाते हैं, दवाएं बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर बढ़ते जाते हैं, दुनिया में जितनी कोशिश करते जाते हैं उतनी दुनिया नीचे गिरती जाती है, दुख अशांति बढ़ती जाती है। लेकिन सब बातों का मूल कहां से शुरू होता है वो कोई नहीं जानता। मूल है आत्मा, आत्मा जब सुधरेगी, बीज सुधरेगा तो वृक्ष अपने आप सुधर जाएगा। ये सारी सृष्टि जैसे गीता में बताया हुआ है एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो जरूर इसका कोई बीज भी होगा। वो बीज कौन है वो दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जो स्वयं तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, निराकार है, वो भी ज्योतिबिंदु है। जैसे हम आत्मा ज्योतिबिंदु है, स्टार है, वो भी स्टार। चींटी का बाप कैसा होगा? चींटी जैसा होगा। हाथी का बाप कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। तो आत्मा ज्योतिबिंदु का बाप कैसा होगा? ज्योतिबिंदु होगा। तो एक्यूरेट स्वरूप माताएं जल्दी पहचान लेती है। क्यों? इस ज्ञान में माताएं ज्यादा क्यों दिखाई पड़ती है? हैं? भाई लोग कम क्यों दिखाई पड़ते हैं? हैं? ज्यादा पाप कौन तन करता है? पुरुष तन करता है कि स्त्री चोला करता है? पुरुष तन। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को भी बड़ा रूप दिखाई देते हैं, टीका लगाते हैं लंबा लंबा, हम बड़े हैं। और माताएं क्या करती है? छोटी बिंदी लगाती है। वास्तव में आत्मा अति सूक्ष्म है। वो अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा अपन को समझना, ये पहला धर्म है। आधा कल्पांत अनराइटियस राज्य चलता है, रावण राज्य देवभान बढ़ाता है। इसलिए जब रामलीला खेलते हैं तो रावण कुंभकर्ण के चित्र, मेघनाथ के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं, है ना? वो आत्मिक स्वरूप में स्थिर होकर के रहते हैं और रावण देवभान में रहता है। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है। उस राइटियस राज्य का नाम रखा है राम राज्य। सतयुग और त्रेता में राम राज्य होता है। वैसे शास्त्रों में दिखाया है सतयुग में नारायण का राज्य था और त्रेता में राम का राज्य था, लेकिन वास्तव में हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जिसको कृष्ण या नारायण कहा जाता है, वो नारायण को भी बनाने वाला कोई नर नारायण कहा जाता है ना, नर से नारायण बनाते। तो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने वाला वही सुप्रीम सोल बाप है, जो स्वयं जन्मण के चक्र में नहीं आता है। वो सुप्रीम सोल बाप शिव शंकर में प्रवेश करता है, इसलिए दुनिया में शिव शंकर को मिला के एक कर देते। वास्तव में शिव है कल्याणकारी और शंकर है संहारकारी, दोनों का काम अलग अलग। एक है निराकार का प्रतीक शिवलिंग, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते। पुराने मंदिरों में शिवलिंग बीच में रखा होता है, आजू बाजू चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी होती है। उन देवताओं की मूर्तियों में मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र रखा जाता है। तो शंकर देवता है, 33 करोड़ देवताओं में बड़े से बड़ा देवता है, महादेव है, लेकिन परमात्मा ने वो सुप्रीम सोल परमात्मा जिसमें प्रवेश करता है तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। ऐसे तो 3 देवताएं सबसे बड़े गाए गए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, लेकिन शिव को ब्रह्मा से नहीं मिलाया। त्रिमूर्ति देवताओं में शिव को त्रिमूर्ति के रूप में शंकर से मिला के किया, ब्रह्मा और विष्णु से क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु इतनी ऊंची स्टेज नहीं पकड़ते, उस परमात्मा की याद में उतना गहरा नहीं टिकते जितनी गहराई से शंकर का चित्र दिखाया गया। शंकर के चित्र को देखने से ही पता चलता है वो किसी की याद में बैठे। अगर वो स्वयं भगवान होते तो वो किसको याद करते हैं? है? जरूर उनसे भी कोई ऊंचा है जिसको याद करते हैं। तो बोला रावण राज्य में ये दुनिया झूठ ही बन जाती, झूठ को ही सच कहने लग पड़ते हैं, फिर बाप आकर सच्ची दुनिया बनाते, झूठी दुनिया को सच्ची दुनिया बनाते हैं। जिसके द्वारा बनाते हैं उस एक की सत्यनारायण की कथा घर घर में गाई जाती, ऐसी ये दुनिया हो जाती है जिसमें सारे ही झूठे बन जाते। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया, एक भी ऐसा छाती ठोकर नहीं कह सकता कि मैं कभी झूठ नहीं बनता या झूठे को स्वीकार नहीं करता। सब झूठे बन जाते तब वो निराकार ज्योति बिंदु, वो नारायण कहो जो नर से नारायण बनता है, शंकर कहो राम कहो उसमें प्रवेश करता है। इसलिए भारतीय परंपरा में आज भी ये मानते आए हैं क्या, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसने कहा? शंकर ने। जो राम की आत्मा है वो ही सत्युग आदि होने से पहले कलयुग के अंत में शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होती, जिसको देवदेव महादेव कहा जाता है। और भी बोला है, और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। माने परमात्मा को, सुप्रीम सोल को शंकर के स्मृति के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुप्रीम सोल शिव शंकर में आकर के समा जाता है, या शंकर इतनी गहरी याद में समा जाता है तो वो सुप्रीम सोल के मानिंद हो जाता है, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते। विष्णु इतनी गहरी याद में नहीं टिक पाए, इतना लवलीन नहीं हो सके, ब्रह्मा इतने लवलीन नहीं हो सके जितना शंकर लवलीन हो जाता है, इसलिए दोनों को मिलाकर के संसार में एक कर दिया गया। अभी तो दुनिया ही झूठी है, किसी को बताओ कि शिव शंकर अलग अलग आत्माएं हैं तो कहेंगे जाने कहां का ज्ञान सुनाए रहे, ये कोई विदेशी आ गया। तो इस झूठी दुनिया को बाप आकर के सच्ची दुनिया बनाते, तमो प्रधान दुनिया को झूठी दुनिया कहा जाता है और सतो प्रधान दुनिया को सत्य युग सच्ची दुनिया कहा जाता है। बच्चे जानते हो, बरोबर ज्ञान सागर परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव अभी हमको समझाए रहे क्या, अनेक जन्मों से हम भक्ति करते आए, मंदिरों में टिकानों में माथा टेकते आए, लेकिन सच्ची राह हमको नहीं मिली। अभी बाप आया हुआ है जो हमको सच बात बताते हैं। कहते हैं बच्चे जन्म से ही तुमको बुद्धि की दात मिली हुई है, ये बहुत बड़ी रहमत मिली हुई है खुदा की। क्या, जन्म से ही हर मनुष्य आत्मा को बुद्धि का वरदान मिलता है। जो परमात्मा का वरदान है उसकी कदर करनी चाहिए, ऐसे नहीं जिसने जो सुनाया उसको सत्य वचन करके मान लेना चाहिए। तो बाप आते हैं कहते हैं बच्चे तुमको जन्म से ही जो बुद्धि मिली हुई है उसका उपयोग करो, बुद्धि से जज करो, निर्णय करो कि राइट बात क्या है और रंग क्या है। ये भगवान की देन है जो तुमको मिली हुई है जन्म से, तो उसका उपयोग करना चाहिए। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जनक के लिए क्या गाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति हुई। तो अभी बाप आए हुए हैं, बाप का सच्चा स्वरूप जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, 100% बुद्धि में बैठ जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा, तो क्या होगा, उसी सेकंड में आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो बच्चे जानते हो, बरोबर ज्ञान सागर परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव हमको ब्रह्मा द्वारा समझाए रहे। कहते हैं ना कि ब्रह्मा के मुख से वेद शास्त्र निकले, अब कोई मुख के अंदर कोई कागज की किताबें थोड़ी भरी हुई थी जो बाहर निकल पड़ी। इसका मतलब है सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु जो जन्मण के चक्र से न्यारा है, गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, जिसको अजन्मा कहा जाता है, वो ब्रह्मा में विष्णु में शंकर में अपनी शक्ति का आरोपण करता है, ब्रह्मा में प्रवेश करता है और मुख से वाणी बोलता है। जो वाणी बोली जाती है उसको कहा जाता है वेद वाणी, जो वाणी बोली जाती है उसको कहा जाता है विद्वान। क्या? विद, विद माना जानकारी, वेद वाणी माना जानकारी देने वाली वाणी। सच्ची बात क्या है वो आकर के बताता है। तो ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र भी दिखाए जाते हैं, तो बाप ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाए, परंतु जीवन मुक्ति का वर्षा किससे मिलता है? कोई एक होगा ना कि सबसे मिलता है। अरे बाप है, सुख शांति देता है, तो जन्मदाता बाप एक होगा या सर्वव्यापी होगा? एक होगा ना, वो सुख शांति का वर्षा देने वाला है। वो एक है, एक में प्रवेश होकर के आता है, सारी सृष्टि में व्यापक नहीं होता। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि को भटकाए दिया। अब परमात्मा बाप कहते हैं, वैसे ऐसे समझो जैसे इस सारे शरीर में कंट्रोल करने वाली आत्मा तुम्हारी भ्रकुटि के मध्य में रहती है, उसे कहते हैं उत्तमांग। क्या कहते हैं? उत्तमांग। जो राजा होगा, कंट्रोलर होगा, वो ऊंची गद्दी पे बैठेगा या जूतियों में जाके बैठेगा? वो तो अपनी ताकत से ऊंची स्टेज ले लेगा ना। तो ऐसे सारी शरीर को कंट्रोल करने वाली आत्मा उत्तमांग में बैठती है। वो उत्तमांग में बैठने वाली आत्मा को कंट्रोल करने वाला परमात्मा भी उत्तमांग में प्रवेश करता है। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। क्या? हमको तुमको तीसरा नेत्र देवताओं को नहीं दिखाया जाता। किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया जाता है। वो शिव नेत्र कहा जाता है। कहते भी है फिर जानते भी नहीं। तो वो शिव नेत्र हम बच्चों को इन आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है और मुख से ज्ञान सुनाए रहा है। जो ज्ञान सुनाए रहा है वही सच्चा ज्ञान है। नई सृष्टि को बनाने वाला ज्ञान है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया। क्या? माया ने बुद्धि का ताला बंद कर दिया था और बाप आकर बुद्धि का ताला खोल रही। कौन सा ताला बताते हैं? नाम क्या दिया? गॉड रेस का ताला। क्या? अरे ये क्या बात हुई? गॉड तो भगवान को कहा जाता है, रेज किरणों को कहा जाता है, तो भगवान की किरणें का ताला बंद करती है बुद्धि का। ये इस समय की बात है। भगवान बाप जब आते हैं, जो श्रीमत देते हैं, जिससे श्रीमत भगवत गीता बनती है, श्रेष्ठ मत देने वाली भगवान की गाई हुई गीता नाम पड़ता है, ज्ञान का गीत सुनाते हैं। उस गीता में जो भगवान ने गीत सुनाया ज्ञान का, जो श्रीमत दी, उस श्रीमत का जो बच्चे पालन करते हैं, वो तो बुद्धि का ताला खोल लेते हैं। और जो उस श्रीमत की अवहेलना करते हैं, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो है तो गॉड का ही दिया हुआ ज्ञान। ज्ञान किसका है? गॉड का दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन दो प्रकार का असर करता है। जो उसकी मत पर चलते हैं, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है, और जो उसकी मत पर नहीं चलते हैं, अवहेलना करते हैं, उनकी ताला बंद हो जाता है। इसलिए गॉड रेस का ताला कहा जाता है। अभी बाप आकर इस ताले को खोलते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकते हो। कौन दिला सकता है? जिसका बुद्धि का ताला खुद का खुला हुआ हो, वो दूसरों को भी, दूसरों का भी बुद्धि का ताला खोल सकता है। इस समय सब जीवन बंद में। क्या ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो बंधन में न हो? सब मनुष्य पिंजरे में बंधे हुए हैं, खास भारत। क्या? भारत में आता हूँ, और जिस भारत में आता हूँ वो ही खास भारत माता रावण की जेल में फंस जाती। भारतीय एक सेकंड में जीवन मुक्ति लेता है। तुम जानते हो हम भगवान के बने हैं, भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। क्या क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हमारे बच्चे हो, रावण के बच्चे नहीं हो। जानते हो ईश्वर ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करते, उनकी विशेषता बताई बच्चों की। भगवान के जो बच्चे हैं उनकी क्या विशेषता बताई? वो क्या जानते हैं? बच्चे जानते हैं कि ईश्वर ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करता है। ये रावण राज्य के गुरु लोग नरक की दुनिया बनाते, ये स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। तो जरूर पुरानी दुनिया में भगवान को आना पड़े। कहाँ आना पड़े? पुरानी दुनिया में आए तो पुरानी दुनिया को नया बनाए। पुरानी दुनिया में पतित भ्रष्टाचारी सब भगवान को बुलाते हैं। क्या कहा? पुरानी दुनिया में की पहचान बताई तो ब्राह्मणों के संघ में दुनिया में भी समझ लो। क्या ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मणों के दो रूप हैं, एक रावण को मकरण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, वो आवाहन करते रहते हैं आओ किसमें है? माउंट आबू में गुलजार दादी में आवाहन करते हैं, तुम आवाहन नहीं करते हो। भगवान कोई बुलाने से नहीं आता है, वो तो बिना बुलाए स्वतः ही आता है। तो भ्रष्टाचारी जो भी है वो सब भगवान को बुलाते रहते हैं, और जो शिष्टाचारी है, हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करना सीख लिया, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना भूलते जाते हैं, उनके पास भगवान खुद ही आता है, उनको बुलाने की दरकार नहीं पड़ती। तो भक्त भगवान को बुलाते हैं कि हमारी जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। क्या तो हम बच्चों में भी अगर कोई ऐसे हैं जो दुखी अनुभव करते हैं, भगवान का ज्ञान लिया तो सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सुख शांति में होना चाहिए, ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होना चाहिए कि चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, उसको हम अपने अनुकूल कन्वर्ट करें, कम से कम उसके दिए हुए दुख को हम स्वीकार न करें। दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं, ये बातें कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानती। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, अपना घमंड बहुत रहता है। क्या कहेंगे? हमने जितनी मुरली पढ़ी है तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी, हम तो इतने साल से मुरली पढ़ते चले आ रहे, तुम हमें कागज की मुरली क्या पढ़ के सुनाओगे? बहुत घमंड रहता है। ये नहीं जानते कि भगवान आकर के उन वेद शास्त्रों का, कागज के शास्त्रों का नया अर्थ बैठ समझाते, उसमें भी सार क्या है वो सार की बात समझाते। बहुत शास्त्र पढ़ते परंतु कोई में ऐसा नहीं है जो सेकंड में सर्व को जीवन मुक्ति दे सके। कोई कह नहीं सकता कि हम सर्व को जीवन मुक्ति दे सकते हैं, कोई कह सकता है? सारी दुनिया को जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता। भक्ति मार्ग में तो ये मान्यता करते आए हैं कि एक एक करके जीवन मुक्त होते जाते हैं। महात्मा बुद्ध को जीवन मुक्ति मिल गई, शंकराचार्य को जीवन मुक्ति मिल गई, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जीवन मुक्ति किसी को मिलती नहीं। शरीर छोड़ते हैं, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेती। अगर सबकी मुक्ति हो गई होती, होती रहती तो ये दुनिया खाली हो जाती। मनुष्य बढ़ते या कम हो जाते? घटते जाते। लेकिन दुनिया में तो मनुष्यों की तादाद बढ़ती जा रही, इसका मतलब कोई मुक्त नहीं हो रहा है। गया भी जाता है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य आत्मा मनुष्य की सदगति नहीं कर सकती, सर्व का लिबरेटर वो है, क्योंकि दुख से लिबरेट करते हैं। दुख से कोई लिबरेट थोड़े किया जाता है, सुख से कोई को छुड़ाया जाता है क्या? दुख से लिबरेट करते हैं। अच्छा, सुख से फिर कौन लिबरेट करता है? द्वापर के याद में दुख शुरू हो गया और सुख समाप्त हो गया, तो सुख से लिबरेट किसने किया? भारत तो सुखी था, फिर सुख से लिबरेट करे दुख में कौन लाया? कौन आया? 2500 वर्ष पहले कौन आया? रावण कौन? पांच कहां आए इकट्ठे?
इब्राहिम
आया, जो विधर्मियों में सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो आज से 2500 वर्ष पहले आया। क्या? काम विकार का साक्षात रूप आया। पांच विकारों में सबसे बड़ा विकार कौन सा होता है? काम विकार। तो उसने आकर के सारी सृष्टि को अपने पंजे में घसीट लिया। अभी तुम जानते हो रावण राज्य शुरू हुआ, उसने हमको सुख से लिबरेट किया, सुख से छुड़ाए दिया। तो सुख से लिबरेट करने वाला है रावण और दुख से लिबरेट करने वाला है राम। अब राम की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म के लिए, 2500 साल के लिए तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। जैसे दोपहर होता है तो अंधेरे का नाम निशान नहीं रहता, और जब रात्रि होती है, रात्रि के 12 बजते हैं, तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो जब सारी सृष्टि पर घोर अंधेरा हो जाता है, तब वो निराकार राम साकार राम में प्रवेश करता है। अब राम की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट हो जाते हो। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति अथवा सदगति। बच्चों की बुद्धि में बरोबर बैठ गया है कि भारत सदगति व जीवन मुक्त था, और जब ऐसा था तब सुखधाम था। 18 जुलाई 1965 की वाणी का दूसरा पेज। अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद है, बेहद का क्वेश्चन हो जाता है, तो बेहद का बाप ही ये बातें बनाते सुनाते हैं। क्या ये बेहद का क्वेश्चन कौन सा बताया? सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कौन करता है और सुख से लिबरेट कौन करता है? ये बेहद का क्वेश्चन है। हद के मनुष्य तो न क्वेश्चन को जानते हैं और न उसके जवाब को जानते हैं, न स्वर्ग को जानते हैं न नरक को जानते हैं। क्या दुनिया क्या समझे बैठी है? जो पढ़े लिखे मनुष्य हैं, वो क्या समझे बैठे हैं कि नरक में बैठे हैं या स्वर्ग में बैठे हैं? वो समझते हैं हमारे लिए तो ये दुनिया में ही स्वर्ग है, वो तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बना ही नहीं सकता, ये तो अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। क्या ये ड्रामा बनाया नहीं जाता? अगर ये कहें कि ये बनाया जाता है तो सवाल पैदा होगा कब बनाया गया। कोई कहे संगम युग में बनाया गया, अगर संगम युग में नया नया ड्रामा बनाया जाए तो हर 5000 साल के अंदर जो आवृत्ति होती है उसमें नई नई बातें आने लग पड़ेंगी। लेकिन ये तो 5000 साल के बाद ज्यों का त्यों रिपीट होता है। तो हद के मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इस ड्रामा में मुख्य पाठधारी है शिव बाबा। क्या मुख्य डायरेक्टर, मुख्य क्रिएटर, मुख्य हीरो एक्टर शिव बाबा है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। देखो शिव बाप तो दो ज्योतिबिंदु का नाम है। जब वो साकार शरीर में प्रवेश करता है बाबा कहा जाता है, उनको क्रिएटर डायरेक्टर कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो पिता है, और उन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है। क्या पार्ट इस साकार सृष्टि पर बजाया जाएगा यह सूक्ष्म मतन और मूल मतन में बजाया जाएगा। पाठ तो साकार षष्ठी पर साकार शरीर से बजाया जाता है, तो ये नहीं कह सकते कि वो कोई ऊपर के वतन के सूक्ष्म वतन के वासी है। कौन? ब्रह्मा विष्णु चंद्र। जगदम्बा जगत पिता का भी पार्ट है क्या? जगदम्बा और जगत पिता का भी पार्ट, जगदम्बा और जगत पिता और ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनमें क्या अंतर है? हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर जब शिवा आते हैं तो उनके साथ साथ ये तीन देवताएं भी होते, उस समय उनको जगदम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे क्या? जगत की अम्बा और जगत पिता तभी हो सकते हैं जिस जब इस सारी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य मौजूद हो, तब उनको जगत पिता विश्व पिता कहा जा सकता है। तो जगदम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट। जगदम्बा जगत पिता चतुर्युग के अंत में होते हैं, चतुर्युग के आदि में लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण में और जगत पिता जगदम्बा में क्या अंतर हुआ? है? है? अंतर क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण होते हैं जब तमो प्रधान है तो जगत के पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, सभी धर्मों के लोग उनको पहचानते हैं। जब नई सृष्टि बनती है तो सभी धर्म रहते ही नहीं, तब सिर्फ एक सनातन धर्म रहता है। तो देवी देवताओं का भी पार्ट है, तो जगत जगत पिता और जगदम्बा का भी पार्ट। तो देवी देवता लक्ष्मी नारायण और जगत पिता जगदम्बा ये अलग अलग हुए या अलग एक ही पर्सनालिटी हुए? है? नहीं,
अलग अलग।
जब देह अभिमानी है प्रजापिता है तो प्रजापिता तमो प्रधान होगा या सतो प्रधान होगा? तमो प्रधान होगा तो परमात्मा प्रवेश करेगा, जब वो सतो प्रधान हो जाता है तो परमात्मा को प्रवेश करने की दरकार ही नहीं। तो जगत पिता जगदम्बा अलग और देवी देवताएं अलग। फिर इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर से बजाना है जो 5000 वर्ष पहले बजाया। फिर भारत में एक धर्म हो जाएगा, अनेक धर्मों के बाद एक धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म वाले अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है क्या? आदि में भी वो जो ब्राह्मण थे वो अभी फिर से रिपीट हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, पहले कौन सा कुल स्थापन होता है? ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण किनको कहा जाता है? ब्रह्मा मुखवंशावली, मुखवंशावली नहीं, ब्रह्मा के मुख से मुखवंशावली कौन? जो मुख से निकली हुई बात को मानते हैं। अगर मुख से निकली हुई बात को नहीं मानते, विपरीत आचरण करते हैं, तो कुखवंशावली ब्राह्मण। तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ क्या थे? कैसे ब्राह्मण थे? वो कुखवंशावली ब्राह्मण थे। और तुम हो कुखवंशावली ब्राह्मण। इनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है क्या? दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? ब्राह्मण संप्रदाय। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय, क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय, ब्रह्मा से ब्राह्मण संप्रदाय और विष्णु से वैष्णव संप्रदाय। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचा क्या? क्या रचा ब्रह्मा द्वारा? क्या रचा? ब्राह्मण संप्रदाय रचा। तो इतने जरूर मुखवंशावली होंगे, कितने? जितने देवता बने होंगे उतने ब्राह्मण बनेंगे। मुख वंशावली तो हो न सके, मुख वंशावली ब्राह्मण पक्के नहीं कहे जा सके। कहते हैं तुम माता पिता तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो जाते हैं, माता पिता स्वीकार करते हैं ना। जैसे कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो कोई पेट से तो पैदा नहीं होता है, लेकिन बच्चा अपना माँ बाप किसको मान लेता है? जिन्होंने गोद लिया उनको माँ बाप मानता है। तो परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर आकर के अडॉप्ट करते हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, पुरुष लोग स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, कुमारी को अडॉप्ट करते हैं, कोई जन्म तो नहीं देते। तो स्त्री पुरुष की रचना कही जाती है, रचयिता कौन हुआ? पुरुष रचयिता हुआ, जन्म तो नहीं देते हैं। स्त्री को अडॉप्ट कर फिर बच्चों को जन्म देते हैं। यह है अडॉप्शन, यहाँ कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। गर्भ की पैदाइश से यहाँ कोई सरोकार नहीं क्या? और जब तक गर्भ की पैदाइश हो रही है ब्राह्मणों के अंदर, तब तक कोई भी ब्राह्मण है भी नहीं क्या? जहाँ पक्के पक्के ब्राह्मण होंगे वहाँ कोई भी शूद्र नहीं होगा, और जहाँ शूद्र होंगे वहाँ कोई भी पक्का पक्का 100% ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोला है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा, जो सीताओं का हरण कर सके। अभी क्या है, अभी तो मधुबन में भी कौन आती है? माया रावण प्रवेश कर जाता है, तो मधुबन से भी सीताओं को हरण करके ले जाता है। तो यहाँ अडॉप्शन, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया अडॉप्ट होते हो क्या? पहले अडॉप्शन किसका? ब्रह्मा के चार पांच मुख होते हैं ना, तो उनमें पहला पहला कोई तो ब्रह्मा हुआ होगा, है? किसी के मुख से सुना होगा तब तो ब्राह्मण बना होगा। ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता होता है क्या? नहीं होता है। तो परमात्मा शिव ने जिसके मुख से सुनाया और जिसने पहली पहली बार सुना और समझा वो हुआ प्रजापिता, पहला ब्राह्मण। ब्रह्मा को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, कौन हुआ ब्राह्मण? जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुआ वो हुआ पहला ब्राह्मण, पक्का पक्का प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। वो सबको अडॉप्ट करने वाला है, अडॉप्टर हुआ। तो बोला तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं क्या? ब्रह्मा के हम बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे हुए, यही एक ब्राह्मणों का कुल है और ये बड़ा भारी कुल है क्या? इतना बड़ा कुल एक ही जन्म में एक ही टाइम में दुनिया में कभी किसी ने देखा नहीं होगा, क्योंकि और धर्म पिताएं आते हैं तो उनकी वंशावली तो होती नहीं। तो कितनी भी करेंगे वो पैदाइश कुख वंशावली नहीं हो सकती उतनी बड़ी, और मुखवंशावली भी उनकी पैदाइश उतनी बड़ी नहीं होती कन्वर्ट होने वाली। लेकिन बाप जो मुखवंशावली पैदा करते हैं वो बहुत बड़ा संप्रदाय बन जाता है, बड़ा भारी कुल है जो अडॉप्ट किया जाता है। फिर इसके बाद कभी भी किसी युग में अडॉप्शन नहीं होती है, सन्यासियों की अडॉप्शन होती है क्या? और धर्म पिताएं सब हो गए सन्यासी, और बाप आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, पहले माँ को रचते हैं क्या? पहले ब्रह्मा की पैदाइश होती है, अडॉप्शन होती है। तो बोला वो अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं, कौन? सन्यासी लोग, धर्म पिताएं। और तुम हमारे फॉलोअर्स हो ऐसे कहते हैं, किनसे? फॉलोअर्स से। तुम फॉलो तो नहीं करते हो? क्या कहा तुम? बाप को फॉलो नहीं करते? सुप्रीम सोल बाप को तुम नहीं फॉलो करते, क्योंकि अगर तुम फॉलो करेंगे तो परमधाम में जाकर के 5000 वर्ष बैठना पड़ेगा, तो तुम बाप को फॉलो नहीं करते। और उनके फॉलोअर्स जो सन्यासी फॉलोअर्स बनाते हैं, वो उनका नाम रख देते हैं फॉलोअर, लेकिन वो भी उन सन्यासियों को फॉलो नहीं करते हैं। जब तक सन्यासी ना बने तब तक फॉलोअर तो कहे नहीं जा सकते। घर गृहस्थ में रहते हैं तो सन्यासी कैसे हुए? घर बार छोड़े, कफनी पहने, सब फॉलोअर कहा जाए? वो हद की बात हो गई। और यहां बेहद में बुद्धि से तन धन धाम सुहृद परिवार सब कुछ बुद्धि से त्याग दे। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो सब बुद्धि से भूल है। आत्मा एकदम नंगी हो जाए। क्या आत्मा के पास अपना कहने का कुछ भी न रहे तो हम हुए सन्यासी। सन माने संपूर्ण और न्यासी माने त्यागी। ये शरीर भी जैसे अपना नहीं, यहां तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है। बाप कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, कठिन राजयोग नहीं सिखाते। कैसा राजयोग सिखाते? सहज राजयोग, सहज सहज समझा समझा के तुमको बुद्धि से सब कुछ छुड़ाते। तो बच्चों को समझाना है, कुछ ना कुछ तो जरूर समझाना है। क्या बच्चों को जो भी मिले, जो भी संपर्क में आवे, जो भी संबंध में आवे, उसको कुछ ना कुछ जरूर समझाना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, इसका मतलब वो एक सेकंड अभी किसी का आया नहीं है। अगर वो एक सेकंड आ जाए तो वो सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा, यानी विष्णु का राज्य स्थापन हो जाएगा। आत्माओं का वो बाप है। परमपिता परमात्मा से जरूर जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। तो शिव बाबा को याद करना है, शरीर का बाप वो है जिसने बीज बोया। क्या शरीर का बाप स्थूल? तो स्थूल बाप बीज भी कैसा बोता है? स्थूल बीज बोएगा या सूक्ष्म ज्ञान का बीज बोएगा? जो स्थूल बाप है, साकार बाप है, वो कौन सा बीज बीजारोपण करता है? स्थूल बीज बीजारोपण करता है। और जो देह का बाप है, निराकार बाप है, वो निराकारी ज्ञान का बीजारोपण करता है। आत्माओं का बाप शिव है। तो जो आत्माओं का बाप है वो क्या बीजारोपण करता है? ऐसा ज्ञान का बीजारोपण करता है जो ज्ञान विस्तार रूपी वृक्ष को जब प्राप्त करता है तो हर आत्मा रूपी पत्ते को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हु एम आई, ये बुद्धि में बात बैठ जाती। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। क्या कहा? लौकिक बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। इस जन्म में कितना भी वर्षा, बड़ा वर्षा मिल जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन पारलौकिक बाप से जो प्राप्ति होती है, परे ते परे का सुख प्राप्त होता है, वो और किसी मनुष्य मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता। भल घर में रहो परंतु तुम शिव बाबा को याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। स्वर्ग का मालिक और कोई तुमको बनाए नहीं सकता। हम सब आत्मा है, शिव की संतान है। क्या बिंदु बिंदु आत्मा संतान किसकी है? शिव की संतान। और जब देह अभिमान में होते हैं तो किसकी संतान है? प्रजापिता की संतान, जगत पिता, जगत जगदम्बा की संतान। कौन है? जो देवान में है जब तक, तब तक। अच्छा ओम शांति।